पापा अगर किसी का बच्चा मर जाए या मुर्दा पैदा हो और कोई उससे पूछे आपके कितने बच्चे हैं, तो वो अगर जवाब दे के दो जिंदा है, एक का इंतकाल हो गया, तो लोग ताज़ियत वगैरह करेंगे, उसको शुमार ना करें और कहे के दो है, तो क्या ये झूठ तो नहीं होगा?
अच्छा, अगर लोग ताज़ियत करते हैं तो इसमें क्या तकलीफ होती है? तो लोग तो इंतजार करते हैं कि ताज़ियत करें, ना किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए ना, एक बार हमने ताज़ियत कर भी ली है ना, तो दोबारा जब मिलेगा तो बात होगा उसकी ख्वाहिश अंगड़ाइयाँ ले रही होती है कि अब दोबारा कब ताज़ियत करें। इसी तरह जो कम बीमार होता है वो अपनी बीमारी का ज्यादा इजहार करता है ताकि हमदर्दियां हासिल हो, और मुंह बनाएगा और आहू करेगा ताकि कोई पूछेगा तुमको क्या तकलीफ है, आप भी अच्छे आदमी है, क्या बोलते हैं अगर बच्चा छुपाए तो नहीं तो लोग ताज़ियत करेंगे, ताज़ियत करेंगे तो क्या है? वैसे ताज़ियत 3 दिन के अंदर होनी चाहिए। हाँ, जिसको पता नहीं था बाहर मुल्क वगैरह था जैसे, और बाद में उसकी तरकीब बनी तो अब वो ताज़ियत करे तो उसमें अर्ज नहीं है, और मरने वाले की एक से ज्यादा बार ताज़ियत भी मकरूह है क्योंकि इससे वो तजदीद हुज़्न। तो बहरहाल ये कि अब आपके कितने बच्चे हैं, तो मेरे 2 बच्चे, एक फोत हो गया, उसका उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आप बोल दोगे कि फोत हो गया है। और उमूमन ये पूछते हैं ना, ये भी खाली पंचायत होती है, इसका असल कोई भी मकसद नहीं होता। आपके कितने बच्चे, आप भले ना वो 10 बोलो तो भी इसने 10 के लिए कोई 100-100 के नोट आपको खर्ची नहीं देने, आप बोलो 1 है तो 1 के लिए भी 10 का नोट इसने देना नहीं है, खाली इसने पूछना है। अच्छा, खाली बच्चों का नहीं पूछेंगे, आप कितने भाई हैं? अब ये 2-4 भाई भी हो सकता है किसी के फोत हो गए, अब इसका भी इसको बताओ सब। अब मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ मेरा कोई भाई नहीं है, तो इसमें क्या झूठ होगा? हालांकि शायद आप लोगों को कमी लोगों को पता होगा कि मेरे और भी भाई हैं, ये नहीं कहना, इसलिए वो हैं नहीं कहना होगा ना, 6 कहना होगा। कम से कम 2 भाइयों की मुझे इत्तला है कि जिनका इंतकाल हो गया, एक मशहूर है जिनका मेरी जवानी में इंतकाल हो गया, एक मेरी विलादत से पहले अब्दुल अजीज नामी एक भाई का इंतकाल हुआ है, थे वो छोटे 10 महीना या 1 साल 10 महीना कुछ थे, बहुत छोटे उसे, वो सोते सोते वो सोए रह गए, इबरत वाली उनकी वफात थी, वो सोए रह गए, उठे नहीं। इसी तरह कम से कम 3 बहनें जिसका मुझे मालूम आते हैं कि वो वफात उन्होंने पाई है, वो सब बड़ी थी बाल बच्चे वाली, 2 मेरी विलादत से पहले ही फोत हो गई। अभी पिछले दिनों मेरे एक भांजे का इंतकाल हुआ जो मुझसे बड़े थे उम्र में, तो अब ये सारी मैं क्या सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा मुझे कि आप के कितने भाई हैं, आपकी कितनी बहनें, आपके खानदान के अफराद कितने हैं, तो मैं तो आजमाइश पा जाऊंगा।
बेटे आपके अच्छा, जो वो ऑपरेशन से या नॉर्मल?
अरे भाई ये तो पूछते टांके कितने ऑपरेशन से हुआ, तो ये पूछती है, पूछते हैं निकल मैं बोल दिया, असल पूछती है कितने टांके आए तेरे, ऐसी यानी फजूल बातें की जाती हैं आजकल जिनका कोई सर पैर नहीं होता। भाई कितने, क्या काम करते हैं, कौन कौन शादीशुदा है, कौन कौन कमा रहा है, किसके कितने बच्चे हैं, सारा बायोडेटा लेते हैं और अपनी आखिरत के लिए ये हिसाब किताब जमा किया जाता है, क्योंकि फजूल बातों पर भी कयामत के दिन जवाब तो देना होगा। यानी एक फजूल बात जो है ना वो कयामत के रोज 5 जगह स्टॉप करवाइए और 5 जगह उसको रोक कर उसको बाकायदा झिड़का जाएगा, फजूल बात भी और वो मिजाह भी, मजाक, वो मजाक नहीं जो दिल आजारी वाला है, वो तो खतरनाक है, वो तो सीधा सीधा गुनाह, ऐसा मजाक जो गुनाह नहीं है, यानी सामने वाले की जिसमें 100% हमें पता है कि दिलादारी नहीं है, ऐसे मजाक में भी इसका भी यानी ज्यादा होना मुनासिब नहीं है, 5 जगह रोका जाएगा। तो ये उतुल कुलूब में हजरत सैयदना अबू तारिकुल मक्की अलैहि रहमतुल्लाहिल कबी ने जो नकल किया, वर्ज करता हूँ, मनकूल है कि हर हंसी मिजाह या लघु बात यानी फजूल बात पर बंदे को मैदान कियामत में 5 मकामात पर झिड़कने और वजाहत तलब करने की खातिर रोका जाएगा। नंबर 1, तूने बात क्यों की थी, क्या इसमें तेरा कोई फायदा था? नंबर 2, तूने जो बात की थी क्या इससे तुझे कोई नफरा हासिल हुआ, फायदा मिला? नंबर 3, अगर तू वो बात ना करता तो क्या तुझे कोई नुकसान उठाना पड़ता? नंबर 4, तू खामोश क्यों ना रहा ताकि अंजाम से महफूज रहता? नंबर 5, तूने इसकी जगह यानी इस हंसी मजाक या फजूल बात की जगह सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहकर अजर व सवाब کیوں حاصل نہ کیا؟ یہ پانچ ایک بات پر، تمہارے بچے کتنے، اس کی حاجت نہیں تھی خامہ کا پوچھا، یہ پانچ جگہ یہ، یہ گاڑی کتنے کی تھی، کون سا ماڈل کی ہے، زیادہ زیادہ کتنی تیز چلتی ہے، ڈینٹ تو کوئی نہیں لگا ہوا، ٹائر زیادہ پرانے تو نہیں ہو گئے، مکان کا کرایہ کیا چل رہا ہے، دکان پگڑی کی ہے یا کرائے کی ہے یا اونرشپ ہے، یار یہ کپڑے کی کون کس سے سلوایا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جتنے بھی سوالات ہیں، ایک ہی مثال دی میں نے، ان سب میں یہ غور کر لے کہ یہ پانچ پانچ جگہ یہ روکا جائے گا اور اس کو جھڑکا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں. ہاں ان میں جو جو سوال ضرورتن کیا تھا نا، اس کا یہ نہیں ہے مسئلہ، ضرورتن بھی ہوتا ہے کہ کپڑے کس سے سلوائے، کیونکہ اس کو پسند ہے تو میں بھی وہاں سے سلواؤں گا، مکان کا کرایہ کیا چل رہا ہے اس لیے کہ مکان لینا ہے، آپ کے بچے کتنے ہیں اس لیے پوچھنا ہے کہ آپ کو عید کے دنوں میں یار میں اپنی طرف سے آپ کے بچوں کے لیے جوڑے سلوا کر دوں گا، کہ میں سفر میں جا رہا ہوں تو آپ کے بچوں کے لیے مجھے تحفے لانے تعداد معلوم کر دوں، ہے نا، تو یہ ضرورت ہے، یعنی ہمارے بلا ضرورت پوچھتے ہیں، تو یہ فضول بات گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں کہیں گے اس کو، لیکن اس کا آپ نے سنا نا کہ یہ اس میں سوال یہ لے کر قیامت کا حساب ہے، تو اس لیے وہ مجھے تو حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت الرحمان کی حکمت کی بات بہت پسند ہے. آپ کی حکمت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جس چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا، اور جو چیز مجھے فائدہ نہیں دیتی اس میں نہیں پڑتا.